ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव की कार्यतालिका की सार्वजनिक। चुनाव के लिए मार्गशीर्ष 1 गते से 10 गते तक होगा दल पंजीकरण। घोषित तिथि में ही चुनाव संपन्न करने में सकारात्मक भूमिका निभाने का नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशन आयोजक समिति ने किया निर्णय। हालिया मानसूनी आपदा में मरने वालों की संख्या हुई 48, 6 लोग हुए लापता। और इस साल चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रतिरोध प्रणाली संबंधी अनुसंधान के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिए जाने की हुई घोषणा। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आगामी फागुन 21 गति के लिए निर्धारित प्रतिनिधि सभा चुनाव की कार्यतालिका को स्वीकृत किया है। आयोग की आज की बैठक द्वारा स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार मार्गशीर्ष 1 से 10 गति तक चुनाव प्रयोजन के लिए राजनीतिक दल पंजीकरण के कार्यक्रम हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के लिए मार्ग 2 गति से निर्वाचन अधिकृतों के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। वहीं समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के लिए मार्गशीर्ष 15 गति को ही निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्थापित होंगे और पूस 18 और 19 गति बंद सूची पेश करने के कार्यक्रम हैं। फागुन 3 गति से 18 गति तक निर्वाचन प्रचार प्रसार होगा और फागुन 21 गति को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। आयोग ने यह भी सूचित किया है कि चुनाव में शामिल होने की चाह रखने वाले दलों को आगामी कार्तिक 30 गति तक दल पंजीकरण का प्रमाण पत्र ले लेना होगा। ये सूचना उन दलों के लिए है जो अब तक आयोग में दर्ज नहीं है। नेकपा माओवादी केंद्र के महाधिवेशन आयोजक समिति के संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा है कि घोषित तिथि में ही चुनाव होना चाहिए। पार्टी मुख्यालय पेरिस टाडा में आज हुई महाधिवेशन आयोजक समिति के सचिवालय की बैठक के बाद संचारकर्मियों से बातचीत में संयोजक प्रचंड ने ऐसा कहा। उन्होंने बताया कि आसन्न प्रतिनिधि सभा चुनाव को सफल बनाने के लिए विघटित संसद में प्रतिनिधित्व वाले राजनीतिक दलों के साथ चर्चा चल रही है और घोषित तिथि पर ही चुनाव संपन्न कराने के लिए सकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सभी राजनीतिक दलों को चुनाव में भाग लेना चाहिए। बता दें कि माओवादी ने आगामी फागुन 21 गते को प्रतिनिधि सभा चुनाव में सक्रिय भागीदारी का निर्णय पहले ही कर लिया है। इसी तरह बैठक ने प्राकृतिक आपदा से पूर्वी नेपाल में हुई जनधन की क्षति पर दुख व्यक्त करते हुए प्रभावित नागरिकों के लिए उचित प्रबंधन का आग्रह किया है। बैठक ने आपदोत्तर पुनर्निर्माण में एकजुट होने का सभी को आह्वान भी किया है। हालिया मानसूनी आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ने आज विवरण सार्वजनिक करते हुए बताया है कि मृतकों की संख्या 48 हो गई है। प्राधिकरण के प्रवक्ता शांति महत के अनुसार भूस्खलन की चपेट में इलाम में 37, पांचथर और काभरे में एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बाढ़ से पांचथर, खोटांग, मोरंग, सुनसरी, उदयपुर और रोहतट में एक एक व्यक्ति सहित कुल 6 लोगों की मौत हुई है। बिजली गिरने से 2 और अविरल वर्षा के कारण बाढ़ की चपेट में उदयपुर में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसी तरह अब तक 5 लोग लापता हैं। बाढ़ में फंसकर रसुआ में 4 और इलाम में 1 तथा भूस्खलन की चपेट में इलाम में 1 व्यक्ति लापता होने की जानकारी दी गई है। पिछले शनिवार और रविवार को हुई अविरल वर्षा ने रोहतट जिले में भारी क्षति पहुंचाई है। जिला मुख्यालय गौर अभी भी जलमग्न है। पूर्व में बहने वाली बागमती नदी और पश्चिम में बहने वाली लाल बकैया नदी में बाढ़ आने के बाद गौर जलमग्न हो गया है। जिला प्रहरी कार्यालय के एसपी नेत्रमणि गिरी ने बताया कि बाढ़ से अब तक 412 परिवार विस्थापित हो चुके हैं। सबसे अधिक दुर्गा भगवती गांवपालिका में 236 परिवार विस्थापित हुए हैं। उस क्षेत्र में 1000 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। एसपी गिरी ने बताया कि गौर से सटी राजदेवी नगरपालिका में बाढ़ से 89 परिवार विस्थापित हुए हैं। सबसे अधिक वार्ड नंबर 8 और 9 प्रभावित हुए हैं। बाढ़ ने रोहतट के अंदर की बड़ी सड़कों को भी अवरुद्ध कर दिया है। बाढ़ के कारण गौर में स्थित सरकारी कार्यालय डूब गए हैं। बागमती नदी और बकैया नदी के विभिन्न स्थानों से बाढ़ का पानी घुसने के बाद ये क्षेत्र जलमग्न हो गया है। दूसरी तरफ रसुआ जिले के गोसाईकुंड क्षेत्र में पदयात्रा पर गए 12 यात्रियों को नेपाली सेना ने बचाया है। सेना के जनसंपर्क एवं सूचना निदेशालय के अनुसार गोसाईकुंड 5 से पदयात्रियों को बचाकर सैफरू भेसी लाया गया है। लापता हुए अन्य चार लोगों की खोज के लिए ड्रोन कैमरा के साथ नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल की एक संयुक्त टीम 5 स्थानों पर खोज अभियान चला रही है, ऐसा निर्देशनालय ने बताया है। अविरल वर्षा के साथ झापा की विभिन्न नदियों में आई बाढ़ से लगभग 3500 घरों के 12,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। विस्थापित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसी तरह कनकाई नदी ने गौरीगंज गांवपालिका 2 अंतर्गत हुलाकी राजमार्ग के निचले तटीय दाएं किनार पर लगभग 2 मीटर तटबंध को काट दिया है। तटबंध के कटने से होकलबारी गांव के लगभग 114 घर डुबान में हैं और 500 हेक्टेयर धान के खेत क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अविरल बारिश और बाढ़ के कारण सरलाही में 16 और 19 घरों के माफ करें अविरल वर्षा और बाढ़ के कारण सरलाही में 1619 घरों के लोग विस्थापित हो गए हैं। बारिश के बाद आई बाढ़ के कारण विस्थापित होकर सुरक्षित स्थानों पर रह रहे लोगों की जानकारी जिला विपद प्रबंधन समिति ने दी है। बारिश से किसानों की कृषि फसलों के साथ साथ भौतिक संरचनाओं को भी भारी क्षति हुई है। चक्रघट्टा गांवपालिका 1 के अकेले पड़रिया में 20 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि विभिन्न पालिकाओं में सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। वहीं स्थानीय 19 लोगों को बचाया गया है, ये जानकारी सरलाही जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता सरोज राय ने दी। इसी तरह कोडेना गांवपालिका 3 में हुलाकी सड़क खंड का लगभग 150 मीटर का हिस्सा लखनदेही नहर द्वारा काटे जाने के बाद ये राजमार्ग बंद है और मरम्मत कार्य के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय किया जा रहा है, ये जानकारी प्रहरी ने दी। अविरल वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हेटौड़ा काठमांडू को जोड़ने वाले मुख्य वैकल्पिक मार्ग संचालन में अब आ गए हैं। इंद्र सरोवर गांवपालिका के महालक्ष्मी नहर में मलबे सहित भूस्खलन से फाखेल काठमांडू सड़क खंड और सिसनेरी होते हुए काठमांडू जाने का रास्ता बंद हो जाने के बाद अवरोधों को हटाकर तत्काल रास्ता खोला गया है, ये जानकारी बागमती प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री डॉ दिनेश चंद्र देवकोटा ने दी। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के अंतर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने बताया है कि नेपाल के पश्चिमी भूभाग से इस साल का मॉनसून के विदा हो जाने के बावजूद कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश में वर्षा की संभावना बनी हुई है। महाशाखा ने बताया है कि आज मॉनसून के विदा हो जाने के बाद भी पश्चिमी वायु के प्रभाव के कारण विशेष रूप से आज और मंगलवार को कर्णाली प्रदेश और सुदूर पश्चिम प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी और तराई के इलाकों में कुछ स्थानों में मध्यम वर्षा की संभावना है। महाशाखा के अनुसार वर्तमान में कर्णाली प्रदेश और सुदूर पश्चिम प्रदेश में आमतौर पर बादल छाए हैं और इन प्रदेशों के 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो भी रही है। महाशाखा ने यह भी बताया है कि इन प्रदेशों के हिमालयी भूभाग के कुछ स्थानों में हल्के हिमपात की भी संभावना है। विभाग के अनुसार 4 दिन की देरी से नेपाल से मॉनसून विदा होने लगा है। महाशाखा के मौसमविद रोजन लामिछाने ने बताया कि आमतौर पर मॉनसून के विदा होने के समय पश्चिमी वायु सक्रिय हो जाया करती है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
बाजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। अविरल वर्षा के कारण भैरहवा में फंसे यात्रियों का हवाई उद्धार किया गया है। नेपाल वायु सेवा निगम का विमान 157 यात्रियों को लेकर काठमांडू लौट आया है, ये जानकारी गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के सूचना अधिकारी विनोद सिंह राउत ने दी। उन्होंने बताया कि उद्धार उड़ान में अशक्त, वृद्ध, बीमार और इमरजेंसी वाले यात्रियों को प्राथमिकता दी गई है। कुजागृत पूर्णिमा के साथ ही इस साल का दशहरे का समापन हो गया है। कुजागृत पूर्णिमा के अवसर पर आज धनधान्य और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करके ये पर्व मनाया जा रहा है। पहाड़ी एवं हिमालयी क्षेत्रों में विजयादशमी से शुरू हुई टीका और जयंती लगाने की विधि आमतौर पर आज के दिन ही पूरी होती है। साथ ही घटस्थापना के दिन विधिवत रखे गए जयंती कलश सहित पूजा की अन्य सभी सामग्रियों का आज ही विसर्जन किया जाता है। रौथट की लाल बकैया नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। रौथट की राजपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 बलुआ स्थित नया मदरसा के पास लाल बकैया नदी में नहाने के दौरान राजपुर 8 बलुआ गोट टोल के 10 वर्षीय अरबाज मियां लाल की डूबने से मृत्यु हो गई है। ये जानकारी इलाका प्रहरी कार्यालय राजपुर ने दी। इसी तरह रौथट के देवाही गुनाही नगरपालिका में दो बच्चियां नाले में बहकर लापता हो गई हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। साल 2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा आज फिजियोलॉजी और मेडिसिन क्षेत्र के विजेताओं के साथ शुरू हो गई है। नोबेल कमेटी ने इस क्षेत्र में मैरी ई बंक्रो, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची को नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया है। तीनों को इम्यून सिस्टम को शरीर के खिलाफ काम करने से रोकने वाले चीज की खोज में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नोबेल कमेटी के प्रमुख ओल कैंप ने कहा, उनकी खोज से ये समझने में मदद मिली है कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है और हमें गंभीर ऑटो इम्यून बीमारियां क्यों नहीं होती। दरअसल हर दिन हमारा इम्यून सिस्टम हजारों किस्म के सूक्ष्म जीवों माइक्रोब्स को शरीर में घुसने से रोकता है। इनमें से कुछ माइक्रोब ह्यूमन सेल जैसे दिखते हैं। ऐसे में सवाल उठता था कि आखिर इम्यून सिस्टम ये कैसे तय करता है कि किस सेल पर हमला करना है और किसे शरीर में आने देना है। नोबेल विजेताओं की खोज में इस फैसले के लिए जिम्मेदार चीज की खोज की है और उसका नाम है टी सेल्स। उनके मुताबिक इम्यून सिस्टम में टी सेल्स सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है और ये इम्यून सेल्स को शरीर पर हमला करने से रोकती हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव की कार्यतालिका की सार्वजनिक। चुनाव के लिए मार्गशीर्ष 1 गते से 10 गते तक होगा दल पंजीकरण। घोषित तिथि में ही चुनाव संपन्न करने में सकारात्मक भूमिका निभाने का नेकपा माओवादी केंद्र महाधिवेशन आयोजक समिति ने किया निर्णय। हालिया मानसूनी आपदा में मरने वालों की संख्या हुई 48, 6 लोग हुए लापता और इस साल चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रतिरोध प्रणाली संबंधी अनुसंधान के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिए जाने की हुई घोषणा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।